नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं करिश्मा राय और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली जी। विजय जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार।
तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईसीसी महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में स्मृति मानधना ने दूसरा स्थान बरकरार रखा। दक्षिण अफ्रीका के साथ 5 मैचों की टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आज से पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ। और छत्तीसगढ़ में पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कल से शुरू। तो श्रोताओं, आईसीसी महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में स्मृति मानधना ने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर नवीनतम रैंकिंग में 14वें स्थान पर पहुंच गई हैं। एक रिपोर्ट।
बल्लेबाजी रैंकिंग में स्मृति मंधाना के अलावा शेफाली वर्मा शीर्ष 10 में शामिल दूसरी भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपना 6ठा स्थान बरकरार रखा है, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स 11वें स्थान पर बनी हुई हैं। गेंदबाजी में स्पिन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा एक पायदान ऊपर चढ़कर 3रे स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर 6ठे स्थान पर बरकरार हैं। तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी शीर्ष 10 से बाहर होकर 11वें स्थान पर खिसक गई हैं। दीप्ति ऑलराउंडरों की रैंकिंग में भी 3रे नंबर पर पहुंच गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज जॉर्जिया वोल पहली बार बल्लेबाजी रैंकिंग के शीर्ष 10 में शामिल हुई, जबकि न्यूजीलैंड की स्टार सोफी डिवाइन सूची में 2 स्थान ऊपर 18वें स्थान पर पहुंच गई हैं। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
तो विजय जी, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को आप किस तरीके से आंकते हैं, और जिस तरीके से स्मृति मानधना की बात करें तो उन्होंने अपना दूसरा स्थान एक बार फिर से बरकरार रखा है।
स्मृति, अगर आप देखें, सबसे कंसिस्टेंट खिलाड़ी हैं। हालांकि जमाइमा है, शेफाली है, हरमन है, ये सब नीचे ऊपर होते रहते हैं रैंकिंग में, लेकिन स्मृति जो है हमेशा टॉप 5 में आप देखेंगे, मिलेंगी आपको। और वर्ल्ड कप के बाद जो पिछला वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है, आप उम्मीद रख सकते हैं कि भारतीय महिलाएं लगातार कम से कम 2-3 जो है टॉप 10 में रहेंगी, चाहे बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो। और मुझे लगता है कि स्मृति मंधाना अपने रेपुटेशन के हिसाब से हैं सेकेंड पे। मैं तो उम्मीद करूंगा कि वो रैंकिंग टॉप करें।
बिल्कुल, अगर हम देखें तो ओडीआई वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था उसमें मानधना ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, और कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने भी प्रदर्शन अच्छा किया था, और इसके साथ ही अब 12 जून को टी20 वर्ल्ड कप भी है। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं इन खिलाड़ियों से?
प्रेशर होगा खिलाड़ियों पर डेफिनेटली, क्योंकि उम्मीदें, देखिए जब आप चैंपियन बनते हैं तो आप पे प्रेशर भी बनता है, और आपके जो चहेते हैं उनकी उम्मीदें भी बहुत बढ़ जाती हैं। और यहीं पे देखना पड़ेगा कोच अमोल मजुमदार को और खिलाड़ियों को, वो कैसे अपनी रेपुटेशन बरकरार रखते हैं। ओडीआई अलग होता है, टी20 में चैलेंजेस बहुत ही अलग होंगे। पर आप उम्मीद रख सकते हैं इस टीम से, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं।
बिल्कुल। अच्छा, अगर जेमिमा की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दिया था, उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं? और इसके साथ ही जो आने वाले मैच हैं उसमें युवा प्लेयर्स जो होते हैं उनके लिए कितनी उम्मीदें होंगी, कितने स्थान होगा?
युवा प्लेयर्स के लिए तो जब आपको मौका मिलता है तो आप चाहते हैं कि आप वो शुड ग्रैब दैट सिचुएशन। और जहां तक जमाइमा का है, जमाइमा तो बिल्कुल, अगर आप देखें, बहुत कमिटेड हैं और उनकी मौजूदगी फील्ड में बहुत बहुत काम आती है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम कप्तान को एडवाइस करती रहती हैं, विकेट कीपर को कंसल्ट करती रहती हैं, और वो खुद एक जबरदस्त फील्डर हैं। अगर आप देखें, मेरे ख्याल से महिला क्रिकेट में सबसे बेहतरीन फील्डर जमाइमा होंगी, पर और टीम में उनकी मौजूदगी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल। बढ़ते आगे, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। अनुष्का शर्मा को पहली बार टी20 टीम में जगह दी गई है, और इसी के साथ श्रृंखला का आगाज 17 अप्रैल से होना है। एक रिपोर्ट।
बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाली T20 श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। इसकी अगुवाई हरमनप्रीत कौर करेंगी। 5 मैचों की श्रृंखला के पहले 2 मुकाबले डरबन में 17 और 19 अप्रैल को खेले जाएंगे। इसके बाद अगले 2 T20 मुकाबलों की मेजबानी जोहानिसबर्ग करेगा, जो 22 और 25 अप्रैल को खेले जाने हैं। श्रृंखला का अंतिम मुकाबला 27 अप्रैल को बेनोनी में खेला जाना है। गुजरात जायंट्स की ऑलराउंडर अनुष्का शर्मा ने पहली बार T20 टीम में जगह पक्की कर ली है। वे ऑक्शन में सबसे महंगी कैप्ड खिलाड़ी नहीं थी। वहीं भारतीय फुलमाली ने अपनी जगह टीम में बनाए रखी है। तेज गेंदबाज काशी गौतम को भी टीम में शामिल किया गया है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए स्नेह राणा को टीम से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा गेंदबाज वैष्णवी शर्मा और अमनजीत कौर को भी टीम में जगह नहीं मिली है। T20 विश्व कप की शुरुआत 12 जून से होनी है। दक्षिण अफ्रीका और भारत को T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और क्वालिफायर की 2 टीमों के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स।
तो विजय जी, इस श्रृंखला को आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है और भारतीय महिला टीम ने नए खिलाड़ियों खासकर अनुष्का शर्मा को पहली बार मौका दिया है। आप उनके चयन को कैसे देखते हैं और इसका टीम पर क्या असर पड़ेगा?
अनुष्का को तो बहुत डिजर्विंग है। अगर आप देखें, अच्छी मीडियम पेसर है और बैटिंग भी अच्छा कर लेती है, फील्डिंग भी ठीक ठाक है। सो उनको मौका मिलना मतलब वो एक उनके दायरे में है कि आगे वाले जो भी टूर्नामेंट होंगे, T20 हुआ जैसे, तो उसमें वो रेंज में है कि शायद उनको जगह मिल जाए, क्योंकि युवा है और कोच अमोल की जो है उनका कहना यही है कि इस गेम में ज्यादा से ज्यादा आपको युवा खिलाड़ी रखने पड़ेंगे। 2-3 एक्सपीरियंस ठीक है, लेकिन जहां तक टीम को चलाने का बात है वो आपको एक्सपीरियंस के दौर पर ही करना पड़ेगा।
बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसे अनुभवी खिलाड़ी हैं जिन्हें टीम से बाहर रखा गया है। क्या यह रणनीति फैसला है या फिर फॉर्म और फिटनेस से भी जुड़ा हुआ मुद्दा हो सकता है और इसका टीम के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?
नहीं, फॉर्म और फिटनेस तो होगा ही, क्योंकि सेलेक्टर्स बड़े ध्यान से चयन करते हैं और अगर आपको जगह आपकी चली गई है टीम में तो आप मोटिवेट होके वापस जब आएंगे तो अच्छी तैयारी से आएंगे। और ये एक तरीके से मैं कहूंगा ये रोटेशन पॉलिसी है, क्योंकि इतना ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको लगता है कि चोटिल होने से बचाना पड़ेगा आपको खिलाड़ी को, क्योंकि इस लेवल पे अगर आप इंजर्ड होते हैं तो वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है।
बिल्कुल, अगर गेंदबाज वैष्णवी शर्मा और अमनजोत कौर की बात करें तो उन्हें भी टीम में जगह नहीं दी गई है।
हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम है, यंग है, वापसी कर सकते हैं और उनके पास मैं कहूंगा कि एक सबक ले लेंगे वो इस कि भाई जगह नहीं बनी है और जब आएंगे वो दिल कम बैक स्ट्रांगली।
बिल्कुल, अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले इस T20 सीरीज को आगामी वर्ल्ड कप से जोड़कर भी देखा जा रहा है और ऐसी टीम के खिलाफ जब भारतीय टीम खेलती है तो क्या लगता है मुकाबला कितना कड़ा होगा?
कड़ा होगा, हालांकि साउथ अफ्रीका घर पे खेल रही है, पिचेस बड़ी चैलेंजिंग है वहां पे, डबल में स्पेशली आसान नहीं होगा, आपको पूरा एक्सपीरियंस आपके के साथ खेलना पड़ेगा। पर साउथ अफ्रीका को आप हल्का नहीं आंक सकते हैं, पर जैसा आपने बोला कि एक तरीके से टीम तैयारी कर रही है T20 वर्ल्ड कप के लिए।
बिल्कुल, इसके साथ ही अगर बात की जाए इंडियन प्रीमियर लीग की तो उसकी शुरुआत से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने टूर्नामेंट के दौरान टीमों के बर्ताव और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के तहत मैच के दिन प्रैक्टिस सेशन पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा खुले में प्रैक्टिस करने की अनुमति भी नहीं होगी। फ्रेंचाइजी दूसरी टीमों के लिए तय पिचों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती और भले ही वो पहले से खाली क्यों न पड़ी हों। मुंबई जैसे स्टेडियम के लिए खास इंतजाम किए गए हैं जहां प्रत्येक टीम को एक ही समय पर प्रैक्टिस करने के लिए 2 विकेट मिलेंगे और मैच के दिनों में फिटनेस ड्रिल और टेस्ट पर भी बैन होगा। इसके साथ ही BCCI ने टीमों की आवाजाही और सपोर्ट स्टाफ की भूमिकाओं से जुड़े नियम में भी काफी बदलाव किए हैं। इनको आप कैसे देखते हैं?
मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी थे, खास करके आप देखें बर्ताव जो प्लेयर्स का जो बिहेवियर है ऑन फील्ड ऑफ द फील्ड, डेफिनेटली BCCI को रिपोर्ट्स मिली होंगी कि इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और जहां तक पिचेस की बात है, इतना लंबा टूर्नामेंट है, आपको पिचेस अच्छी रखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस की हो चाहे खेलने की हो, तो वो भी BCCI के जहन में होगा कि आप थोड़ा सा उसमें मैं कहूंगा एक थोड़ा सा यूज करें कम पूरे बाकी जो टीम्स हैं उनके लिए, लेकिन इसमें सबसे बढ़िया निर्णय यह है कि आप जो फील्डिंग है आपकी इंप्रूव होगी, इसलिए क्योंकि आप अच्छे कंडीशंस में खेलने को मिलेगा आपको। कई बार ग्राउंड मेंटेन करना मुश्किल होता है, उसमें प्लेयर चोटिल हो जाते हैं, पर ये पिचेस की इंपॉर्टेंस, और जहां तक दूसरा जो सबसे आपने शुरू में बोला कि बर्ताव बहुत जरूरी है।
बढ़ते आगे, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आज से पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू हुई। तमिलनाडु की बर्निका एलंगोवन ने राष्ट्रीय इंडोर चैंपियनशिप के शुरुआती दिन महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 4.22 मीटर की ऊंचाई पार कर यह नई उपलब्धि हासिल की है और दो दिन की इस प्रतियोगिता में 97 महिला एथलीट सहित 278 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो एक और प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है जिस तरीके से बर्निका ने, कैसे देखते हैं इसे आप?
अच्छा है, और आप देखिए आने वर्ल्ड वाइड जो इंडोर एथलेटिक्स है बहुत पॉपुलर है, और हमारे यहाँ थोड़ा सा पहले ध्यान नहीं दिया गया था। अब इनके समझ में आ रहा है कि नहीं, ये एक फील्ड ऐसा है जहां आपको ध्यान देना पड़ेगा, और एफआई भी इसमें बहुत कॉन्सेंट्रेट करके बढ़ावा दे रही है इंडोर एथलेटिक्स को।
बिल्कुल, और विजय जी, हम देख रहे हैं कि लगातार जो हमारे खिलाड़ी हैं एथलेटिक्स हैं वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पहले सबका फोकस जिस तरीके से सिर्फ क्रिकेट पे होता था, और लेकिन अब तमाम ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जहां से कई खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं।
इसके लिए आपको एफआई को क्रेडिट देंगे आप, लेकिन सबसे ज्यादा आप देखिए सरकार, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है उन्होंने ध्यान दिया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका ये कहना है कि आप एथलेटिक्स में हमारा आगे फ्यूचर अच्छा है, और अगर आप इम्प्रूवमेंट करेंगे तो एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, आगे जाके ओलंपिक्स भी है, तो उसमें आपको मेडल की संभावना हो सकती है।
वहीं छत्तीसगढ़ में कल से पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स शुरू हो रहे हैं। 3 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के दौरान कुल 7 खेलों की स्पर्धाएं होंगी। इनमें एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी, कुश्ती, वेटलिफ्टिंग और स्विमिंग की स्पर्धाएं शामिल हैं। इसके अलावा मलखम और कबड्डी को डेमो खेल के रूप में भी शामिल किया गया है। एक रिपोर्ट।
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ के 3 शहरों रायपुर, बस्तर और सरगुजा में आयोजित किए जाएंगे। रायपुर में फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी, स्विमिंग, वेटलिफ्टिंग और कबड्डी की प्रतियोगिताएं होंगी, जबकि बस्तर में एथलेटिक्स और सरगुजा में कुश्ती तथा मलखम्ब की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में देश के करीब 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3,000 से अधिक जनजातीय खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभारंभ कल 25 मार्च को रायपुर में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य देश के आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं को एक ऐसा राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करना है जहां उनके खेल कौशल को सही पहचान और अवसर मिल सकें। विकल्प शुक्ला, रायपुर।
तो विजय जी, छत्तीसगढ़ से ऐसी खबर सामने आना कि जहां पर इतनी बड़ी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स प्रतियोगिता शुरू हुई है, और वहां पर जब इस तरीके की प्रतियोगिताएं होती हैं तो ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि होती है, और सरकार के लिए भी कितनी बड़ी उपलब्धि होती है ऐसे क्षेत्र में करवाना।
सरकार को तो आपको पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और ट्राइबल गेम्स को आगे लाने के लिए आपको खुद का कोई आप उम्मीद रख सकते हैं करिश्मा कि आगे टाइम में कभी भी कुछ पता नहीं एक आपको चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन या एशियन गेम्स चैंपियन इन खिलाड़ियों में से मिल जाए।
बिल्कुल। वहीं भारत के टॉप शॉटगन शूटर ISSF वर्ल्ड कप 2026 में पोडियम पर जगह बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जो बृहस्पतिवार से मोरक्को में शुरू होगा। वर्ल्ड कप में 271 निशानेबाज हिस्सा लेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन भारतीय पुरुष टीम की अगुवाई करेंगे, जबकि पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु और उन्नति हुडा उबर कप में भारतीय चुनौती पेश करेंगी। तो इसी के साथ मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बेलारूस की आर्याना संबालेका क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। विजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
नमस्कार।